भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो मुझे कहा गया था जगन्नाथ जी के बारे में बोलने के लिए, तो हमारे पास एक घंटा है, तो कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ जी की जो महिमा है उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ ये बहुत विशेष विग्रह है और इनको कहा जाता है प्रेमेर ठाकुर। कौन से ठाकुर है ये? प्रेमेर ठाकुर। कई ठाकुर हो सकते हैं लेकिन जगन्नाथ जी बहुत विशेष विशेष भगवान है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये कोई जगन्नाथपुरी या उड़ीसा नाथ नहीं है या पंडा नाथ नहीं है, ये पूरे जगत के नाथ हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ सबसे अधिक दयालु हैं सारे जीवों के प्रति, और विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ का एक गुण हमें स्मरण करना चाहिए या उस पर मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और वो गुण कौन सा है? भक्त वत्सल। क्योंकि भगवान के कई सारे अवतार हो सकते हैं, कई सारे रूप विग्रह आदि हो सकते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का ये विशेष गुण जीवों को उनकी ओर आकर्षित करता है, और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का आश्रय ग्रहण करना चाहता है, और वो गुण है उनकी वत्सलता। तो हम कई बार सुनते हैं कि भगवान को रुक्मिणी देवी ने जब भगवान को पत्र लिखा था, लव लेटर लिखा था, क्योंकि रुक्मिणी ने क्या किया था, सुनकर भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण किया था। उन्होंने कुछ और इतना बुद्धि लगाया नहीं। नारद मुनि आदि के द्वारा रुक्मिणी देवी ने भगवान की महिमा को सुना, और विशेष रूप से रुक्मिणी कहती है कि मैंने क्या सुना भगवान के बारे में, दो चीजों के बारे में सुना, श्रुत्वा गुणम और श्रुत्वा रूपम, भगवान के गुण क्वालिटीज, भगवान के गुणों के बारे में सुना। और क्योंकि भगवान के अनंत गुण है, और ऐसे गुणों को सुनकर जो रुक्मिणी अभी युवा थे उसका हृदय कृष्ण की ओर ऐसे आकृष्ट हो गया। रुक्मिणी कहती है कि हे कृष्ण, आपके अलावा मेरे चित्त में किसी और का स्मरण नहीं हो रहा है। तो वास्तव में उन्नत भक्त कोई है तो उसका मीटर क्या है उन्नति का, कि वो कितना कृष्ण कथा से आसक्त है, कितना कृष्ण कथा को सुनने के लिए, कितना कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए वो लालायित रहता है। और यही एक चीज है जिसके कारण व्यक्ति कृष्ण को अपना बना सकता है। इसलिए प्रभुपाद बारंबार बोला करते थे, तत्र लवल्यम मूल्य एकलम जन्म कोटि सुकृतीर्ण लभ्यते, कि भगवान को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए या भगवान में और मुझ में दूरी को कम करने के लिए हमारे अंदर लवल्य होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए। और वो लालसा को बढ़ाना कैसे है? बढ़ती है लालसा जब भगवान के बारे में हम अधिक से अधिक उन्नत भक्तों से सुनते हैं। इसलिए देवोभूति कहती है सताम प्रसंगा मम वीर, कपिल देव कहते हैं अपनी माता को सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंतिरुत्कर्ण रसायन कथा तज्जोशनादाशु अपवर्गवर्त्मिनी भक्ति रति श्रद्धा श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमणिष्यति। तो वो कहती है, वो कहते हैं कपिल कि वास्तव में भक्तों के संग में आकर भगवान के गुणगान को अधिक से अधिक सुनना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए? अपने कानों का प्याला बनाना चाहिए। जैसे कुछ पीना होता है तो हम एक तो हाथ से ऐसा बनाते हैं, उसी प्रकार से कान ऐसे तरस जाने चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, व्याकुल हो जाना चाहिए कि अरे मैंने ठीक से श्रवण नहीं किया है। हाँ, ठीक से सुनना चाहिए तो भगवान के लिए जो लालसा है हमारे हृदय में वो बढ़ सकती है। तो इसी प्रकार से जो रुक्मिणी थी उन्होंने भगवान के एक तो गुणों के बारे में सुना था और दूसरा रूप के बारे में, श्रुत्वा रूपम, कि भगवान इतने सुंदर हैं। इसलिए रुक्मिणी कहती है आप तो भुवन सुंदर हो, भगवान का ये संबोधन देती है अपने लव लेटर में, कहते कि भुवन सुंदर मीन्स इस भुवन में कोई भी आपसे अधिक सौंदर्यशाली नहीं है। इसलिए सौंदर्य की खान कोई है तो वो कौन है? कृष्ण है। हमें चेक करना चाहिए कि मैं इस भौतिक रूपों से आकृष्ट हो रहा हूं अधिक या कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो रहा हूं, तो वो चेक लिस्ट है। तो इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है एक भक्त के जीवन में। और जिसके हृदय में सुनने के लिए लालसा नहीं है वो कभी भी भगवत भक्ति नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि वो भगवान की ओर अग्रसर हो सके, उसके लिए तो भक्तिमय जीवन स्वप्नवत है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे मैंने इस मंदिरों का सेंटर्स का निर्माण किया है वो केवल एक ही उद्देश्य के लिए, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं खाली पड़े हैं। लेकिन मंदिरों का, मेरे मंदिरों की विशेषता क्या है कि वहां लोग आए और भगवान के बारे में कान भर भर के सुने, ये महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग का मतलब होता है श्रवणम कीर्तनम, भगवत कथा को सुनना और भगवत नाम का क्या करना? कीर्तन करना। और यही लाइफ है भक्तिमय जीवन की। हम चर्चा करते तो भक्तिमय जीवन क्या है? श्रवणम कीर्तनम, भक्तिमय जीवन का ये सार है। और इसी पर ही भगवत भक्ति टिकी है और इसी के द्वारा ही भगवान को हम अपना अपना बना सकते हैं। इसलिए एक भक्त को ये श्रवण कीर्तन करने में बहुत गंभीर होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये भक्ति लता बीज तो मिल गया लेकिन श्रवण कीर्तन जले करये सेचन, श्रवण कीर्तन रूपी जल से उसका सिंचन करो, जिसके द्वारा भक्ति लता बीज प्रगाढ़ होगा और वो बढ़ेगा, भगवान के चरण कमल तक तो जाएगा गोलोक वृंदावन और कृष्ण के साथ आपका घनिष्ठ संबंध स्थापित होगा। तो इसी प्रकार से जो गुण है एक गुण भगवान का है भक्तवत्सल। भक्तवत्सल मीन्स भगवान भक्तों से इतना अधिक प्रेम करते हैं। इस संसार में आप देखो कौन हमसे कितना प्रेम करता है? हमारे माता पिता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे चाहे पत्नी हैं या पति हैं, इन सबका प्रेम कब तक है? कुछ समय तक है, कुछ हद तक है। जब कुछ इंद्रिय तृप्ति में बाधाएं आ जाती हैं, डिमांड्स हम एक दूसरे की पूर्ति नहीं करते तो ये प्रेम क्या हो जाता है? रुक जाता है, खंडित हो जाता है। इसलिए भक्ति क्या है, अखंडित है, अहेतु की और अप्रतिहता। अप्रतिहता शब्द का अर्थ है बिना किसी रुकावट के, और अहेतु की का मतलब है कोई हेतु नहीं, भगवान को केवल प्रसन्न करना है। तो इस संसार में लेकिन ऐसा नहीं है, इस संसार में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम रखता है, व्यवहार करता है, आदान प्रदान डीलिंग करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पीछे कोई हेतु छुपा हुआ है, हम खुद ही महसूस कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है, कृष्ण के लिए थोड़ा से भी कोई करता है डिवोटी, कृष्ण लाइफ टाइम याद रखते हैं। इस संसार में आप इस महीने किसी के लिए कुछ करो वो भूल जाएगा छह महीने में, फिर से आपके लिए आपको उसके लिए कुछ उपकार करना पड़ेगा तो उसको याद आएगा, हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, ये मेरी केयर करता है या मुझ पर उपकार करता है। इस संसार में तब ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञता भाव रहता है नहीं है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन कृष्ण कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में कि थोड़ा सा भी कोई करता है तो मैं उसको महान भय से रक्षा करता हूं। तो भगवान जगन्नाथ का तो गुणगान असीम है, हाँ जैसे सागर की को असीम सागर है, या फिर आचार्यगण कहते हैं पृथ्वी के जो मिट्टी के कण हैं कोई व्यक्ति उनको शायद गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ के बारे में हम जब से कृष्ण भावना में आए हैं सुनते रहते हैं, चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं, तो इतना कुछ है, इतना खजाना है भगवान जगन्नाथ की जो चर्चा है। लेकिन हमें कभी भी भगवान के कुछ कुछ गुणों पर मेडिटेट करना चाहिए और दिन भर उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। इसी को कहते हैं कृष्ण भावना या सततम कीर्तयन्तो माम, सतत भगवान का कीर्तन। तो एक भक्त को हमेशा कुछ ना कुछ भगवान के जीवन से, भगवान के चरित्र से कुछ लेना चाहिए और उसको अपने दिमाग में क्या करना चाहिए, डालना चाहिए, और दिन में उसको स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो फिर हमेशा हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं और भगवान को अपने नजदीक अनुभव करते हैं। तो ये जो गुण है कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ का, भक्त वत्सलता, ये सर्वोपरि है। मतलब बहुत गुण है उनमें, लेकिन सर्वोपरि गुण कौन सा है, भक्त वत्सलता। मैं कई बार ये बताता हूँ, भक्त वत्स शब्द आता है बछड़े से, हाँ तो इतना अधिक प्रेम करती है जो गाय अपने बछड़े से, कितना प्रेम करती है, कितना करती है। बछड़ा जब जन्म लेता है तो कितना गंदगी से भरा रहता है। मैं कुछ महीने पहले अपने माता पिता से मिलने गया था तो उनके पास गाय थी, तो मैं भी यहाँ के लिए निकल रहा था, बैग उठाया घर से बाहर निकल ही रहा था तो वहां गाय ने बछड़े को जन्म दिया। तो मैं बैग छोड़ के देखने गया, हाँ कैसे बछड़ा है, क्योंकि हम बोलते रहते हैं हमेशा, तो देखा कि बछड़ा पूरी तरह से भरा हुआ था। हाँ तो पिता ने उसको कुछ कुछ जो करते हैं कार्य वो सारे किए, तो मुझे याद आया कि भक्त वत्सल, हाँ इतना गंदा होता है जो बछड़ा जब जन्म लेता है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, लेकिन गाय क्या करते है उसको चाटती रहती, चाटती रहती, चाटती रहती, और इतना सुंदर हो जाता है कि हम उसके साथ सेल्फी खींचना चाहते हैं, ऐसी स्थिति है। हाँ उसी प्रकार से भगवान है, भगवान इतना प्रेम करते हैं भक्त से कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो है भक्त वत्सलता। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के कई सारे भक्त हुए हैं, कई सारे भक्तों के साथ उनकी लीलाओं को आपने सुना होगा, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा क्योंकि कृष्ण कथा की खासियत क्या है, नूतन है। क्या है, हमेशा नूतन। परीक्षित महाराज ने तो कई कृष्ण कथा के क्वालिटीज बताए हैं, तो एक उन्होंने बोला कि कृष्ण कथा हमेशा नई है, दूसरा गुण भागवतम में बोला कि कृष्ण कथा माधवी, माधवी मीन्स मधुर है, बहुत स्वीट है, हाँ ऐसे शुकदेव परीक्षित महाराज कहते हैं। और तीसरा क्वालिटीज बताते हैं कृष्ण कथा के परीक्षित महाराज, लोकमलापहा, मतलब इस संसार का जो कलमश है उसको साफ करने वाला है, या हमारे जीवन की जो गंदगी है उसको क्लीन करता है कृष्ण कथा। इसलिए कृष्ण कथा की तुलना सबसे शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी दशम स्कंद में गंगा से करते हैं। किससे करते हैं? गंगा से। वो कहते हैं गंगा तीनों जगत को पवित्र करती है। जब स्वर्ग में होती है तो वहां मंदाकिनी के रूप में बहती है, मंदाकिनी नाम होता है उसका, वहां सारे स्वर्गवासियों को पवित्र करती है। ये जगत में आती है तो उसके जाह्नवी, गंगा, भगीरथी कई सारे नाम है जिसके द्वारा इस जगत को मध्य लोक को पवित्र करती है। और जब इस संसार से नीचे जाती है पाताल लोक में गंगा, तब उसका नाम भोगवती होता है। तो सारे संसार को वहां भी क्या करती है? पवित्र करती है। उसी प्रकार से ये कृष्ण कथा है। तो ऐसे कई सारे जगन्नाथ की लीलाएं आपने सुनी होगी, हाँ, लेकिन कुछ लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ ये कलयुग के विग्रह हैं, क्योंकि हर युग में अपने विग्रह होते हैं, हर युग में विशेष धाम होता है। हाँ, कलयुग का धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी है, क्योंकि बद्रीनाथ सत्य युग के लिए है, द्वापर के लिए द्वारका है, त्रेता के लिए रामेश्वरम है, और कलियुगा के लिए क्या है? जगन्नाथपुरी है। तो ऐसे तीनों स्थानों में भगवान विशेष विशेष कार्य करने के लिए विराजमान होते हैं, क्योंकि उन युगों में यदि भगवान को आपको मिलना है, देखने जाना है, तो द्वापर युग में लोग द्वारका पहुंच जाते थे। भगवान द्वारकाधीश के रूप में समंदर के बीच में रुक्मिणी आदि रानियों के साथ निवास करते थे। तो उसी प्रकार से कलियुगा में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं नीलाचल में निवास करता हूँ, वास करता हूँ दारु ब्रह्म के रूप में। दारु ब्रह्म मीन्स वुडन फॉर्म, लकड़ी का जो रूप है उनका, वुडन फॉर्म में निवास करता हूँ समंदर के तट पर जगन्नाथ के रूप में, और अपनी जो बहन है सुभद्रा और बलराम के साथ। और भगवान वहां रहकर अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए कभी भक्तों से द्वेष की भावना नहीं रखनी हृदय में, ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है। थोड़ी सी भी आ जाएगी ना तो कभी भी हमसे हरिनाम नहीं होगा। जब कभी भी भगवान के प्रति सेवा की भावना हृदय में अपने आप ऐसी निकलेगी नहीं, और मन करेगा नहीं फिर कभी कृष्ण कथा को गंभीरता से सुनने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, भगवत चर्चा के लिए हृदय में लालसा कभी नहीं आएगी। इसलिए कृष्ण भक्ति में आने के बाद बहुत पहले तो हम बहुत उत्साही होते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना, नया नया मुल्ला बहुत चिल्लाता है। जब मस्जिद में ज्वाइन करता है नया मुल्ला तो पूरा लाउड स्पीकर के साथ हम प्रार्थना अपनी बोलता रहता है। उसी प्रकार से हम भक्ति में आते हैं तो हरि बोल होते हैं तो पूरा कूदते हैं, मानो छत को पकड़ लेगा या चांद को पकड़ लेगा। लेकिन धीरे धीरे जब दिन बीतते हैं तो बहुत सारी चीजों से वो ग्रसित हो जाता है, और जो भक्तों के संग में रह के भक्तों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या आदि की भावना उसके हृदय में जागृत होती है, और ये होने के कारण उसका जो हृदय है कृष्ण के प्रति आकृष्ट नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो शुरुआत का श्लोक है उसमें शुकदेव गोस्वामी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, कि इस कृष्ण भक्ति में द्वेष करने वाले या ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या ऐसी चीज है जिसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। बाकी ठीक है, आपके अंदर काम है उसको लगा सकते हो, काम कृष्णार्पणे, काम मतलब डिजायर्स, इच्छाएं, तो इच्छाएं हैं तो उसको कृष्ण के प्रति अर्पित कर सकते हो भगवत सेवा की इच्छाएं हृदय में जागृत करके। लोभ है तो कैसे लोभ को आप भगवान के प्रति लगा सकते हो? लोभ साधु संगे हरि कथा, भक्तों का संग करने के लिए लोभित होना, और हरि कथा की चर्चा करने के लिए, हरि कथा को सुनने के लिए लालायित होना। तो इस प्रकार से, लेकिन जो ईर्ष्या है उसको आचार्यगण कहते द्वेष की भावना है, उसको नहीं लगा सकते आप कृष्ण की सेवा में। उसको क्या करना होगा? स्वयं ही आपको अपने हृदय से खदेड़ कर उसको निकाल देना होगा। हाँ, इसलिए भगवान को कभी आनंद नहीं होता, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इवन जगन्नाथ तो बहुत उसके लिए सुने जाते या जाने जाते हैं। जगन्नाथपुरी में दक्षिण भारत से एक महान भक्त आए थे, श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य, जिनका नाम क्या है, श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो ये रामानुजाचार्य, आप दक्षिण भारत जाते हो तो वहां इतने विग्रह सेवा की यह है, विधि विधान है, जिनके बारे में आप देखकर ही हैरान हो जाओगे दक्षिण भारत के मंदिरों में। और वहां बहुत नियमों का कड़ाई से पालन होता है भगवान के विग्रह की सेवा आदि में। तो ये रामानुजाचार्य जब जगन्नाथपुरी आए, वहां जगन्नाथपुरी में देखा कि यहाँ तो बड़ा इतना कुछ रूल्स रेगुलेशन से काम नहीं होता है, यहाँ तो भक्त लोग स्पॉन्ट मतलब स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये देखकर रामानुजाचार्य ने कहा राजा को, उस समय जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, उनको कहा कि मैं इन सब जितने पुजारी आदि हैं जगन्नाथ मंदिर में, उन सबको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ और उनको प्रॉपरली विधि विधान सिखाना चाहता हूँ, कैसे विग्रह की आराधना सेवा करनी चाहिए नियमों के आधार पर। तो ये जो पंडा लोग हैं जगन्नाथपुरी में, सेवकों को क्या कहते हैं, पंडा। तो जो पंडाज हैं वो बड़े बड़े बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने सोचा ये क्या है, ये हमें आकर अभी सब कुछ हमारा उल्टा पुल्टा कर देगा, हमें बांध देगा नियमों से, तो बहुत कठिन हो रहा था। लेकिन राजा की आज्ञा थी कि ये महान आचार्य दक्षिण से आए हैं, ये जो कहेंगे वही होगा जगन्नाथ मंदिर में। तो लेकिन जगन्नाथ जी को ये पसंद नहीं था, भगवान की सेवा जैसे भक्त कर रहे हैं वो किसकी अनुमति होती है, उसके लिए भगवान की अनुमति होती है। तो जब रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं कल सुबह आऊंगा और सबको सुबह से ही सिखाऊंगा पूरे दिन की अर्चना विग्रह सेवा आदि कैसे होती है, तो सारे जो बेचारे पंडित पंडाल थे वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब दूसरे दिन का समय आया तो जगन्नाथ मंदिर में जो मेन गेट है, सिंह द्वार है, वैसे चार द्वार है वहां जगन्नाथ मंदिर, तो सिंह द्वार है, व्याघ्र द्वार है, हस्ती द्वार है और एक द्वार में भूल गया, तो ऐसे चार द्वार है। लेकिन जो वैष्णवगण है वो सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं, विशेष द्वार से प्रवेश करना भी एक इम्पॉर्टेंट होता है मंदिर में। क्यों? क्योंकि जब आप सिंह द्वार से प्रवेश करते हो जगन्नाथ मंदिर में, तो आपके हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति की भावना है वो जागृत होती है, जिसमें अहेतु की अप्रतिहता का भाव, बाकी द्वारों में अलग अलग जो भोग करने की भावना रखने वाले लोग उस द्वारों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी भगवान से कुछ ना कुछ आकांक्षा है, इच्छाएं, डिजायर्स होती हैं जिनको पूर्ति करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कभी भी किसी और द्वार से प्रवेश नहीं किए, चैतन्य महाप्रभु लगभग 18 साल वहां रहे, 24 साल की आयु में वो नवद्वीप को छोड़ा, संन्यास लिया और लगभग 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, उसमें से बाकी 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने ट्रैवल किया, 48 ईयर्स थे ना चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से ये जो सिंह द्वार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहां ये सारे पंडाल खड़े थे लाइन में सुबह और इंतजार कर रहे थे कि अभी वो आएंगे। हाँ, कौन आएंगे, रामानुजाचार्य आएंगे। तो भगवान जगन्नाथ को सहन नहीं हुआ कि ये मेरे भक्तों के प्रति ऐसा भावना रखता है। उन्होंने रामानुजाचार्य रात को अपने एक आश्रम में सो रहे थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी ने डायरेक्ट वहां से उठा लिया उनको, उठाकर उनको दक्षिण भारत विशाखापट्टनम है, वहां एक छोटा सा गांव है, एक सिटी है जिसका नाम है श्रीकाकुलम, और उसके पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुर्मक्षेत्र। मैं 2009 में गया था वहां, तो वो कुर्मक्षेत्र में रामानुजाचार्य को पटका दिया, रात को उठा के वहां डाल दिया। और जब सुबह सारे पंडाल जन वेट कर रहे हैं कि अभी आएंगे, राजा ने बोला, राजा भी आ गया, लेकिन रामानुजाचार्य का पत्ता किसने गायब कर दिया था, जगन्नाथ जी ने कट किया था, और फिर दिखा ये नहीं, उनके जहां रह रहे थे वहां जाकर चेक किया, वहां नहीं थे। तो फिर सब समझ गए कि किसकी इच्छा है, जगन्नाथ जी की इच्छा है। तो जगन्नाथ जी को, भगवान को कभी भी पसंद नहीं होता कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का वर्तन उनके भक्तों के प्रति करे, क्योंकि भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि को साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। क्योंकि जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति जब अपराध किया था तो अम्बरीश पूरे चक्कर लगा रहे थे त्रिभुवन के, तब अम्बरीश को बोला था उन्होंने, डांट के बोला था कि साधु के अलावा मैं अपने भक्त के अलावा किसी और को नहीं जानता और मेरा भक्त भी मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता। सोचो कितना बड़ा ये कोट है या भगवान का शब्द है। भगवान कहते मैं किसी और को नहीं जानता, मतलब कितना प्रेम करते भगवान अपने भक्त से। तो रामानुजाचार्य को डाला, वो सुबह आंख खोलते हैं, उनको लगा कि अभी जगन्नाथ मंदिर पहुंचना है क्लास देने के लिए सारे पंडाज को, तो आंख खोला तो देखा ये कहां में हूं, पेड़ पौधे आसपास नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मेरी गलती हो गई है और देखा कि इस स्थान में मैं हूं जहां एक छोटा सा गांव है, तो फिर वहां वो निवास करते रामानुजाचार्य और वहां फिर एक विग्रह की सेवा करते, कुर्म भगवान का कुर्म अवतार है उसकी सेवा करते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी जो भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हृदय में ये डालना चाहिए क्योंकि हम सब व्यक्ति दो चीजें हम ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में। हम कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में ढूंढ रहे हैं जो हमसे इतना प्रेम करे कि उसकी कोई सीमा ना हो। शादी हम क्या सोच के करते पता है आपको, क्या सोच के करते हैं कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है मुझसे क्या करे, वो बहुत प्रेम करे, पहाड़ से ऊंचे हिमालय की ऊंचाई से भी अधिक प्रेम करे। लेकिन वैसा होता नहीं है, वो प्रेम क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आप तो अनुभवी हो सारे, प्रेम घटता जाता है घटता जाता है कभी कभी तो पूरा तलाक तक आ जाता है। और हम भी कोई ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में जिसमें मेरा हृदय पूरी तरह से अर्पित करना चाहता हूं। मानस देह जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर, भक्तिनो ठाकुर कहते हाँ कि हे नंद किशोर, मेरा मन तन घर आदि सब आपके प्रति अर्पित कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है हम चाहते हैं किसी से प्रेम करना और किसी व्यक्ति को ढूंढते जो हमसे भी क्या करे, प्रेम करे। इसलिए और सुख इसी को कहते हैं, सुख किसको कहते हैं, इसी को ही कहते हैं। इससे हमें थोड़ी सी सुख की अनुभूति होती है, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में मेरे पास बहुत कम दिन है, बहुत कम दिन है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, कृष्ण के प्रति अपना जो सर्वस्व है, अपना हृदय है, वो अर्पित कर देना चाहिए। ये बीड़ा उठाना चाहिए कि मैं किससे सर्वाधिक प्रेम करूंगा तो वो किससे, कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण कभी चीट नहीं करेंगे, कृष्ण चीटर नहीं है। हाँ चीटर है लेकिन भगवान उनको धोखा देते हैं जो उनका भजन नहीं करते, उनके भक्तों को नहीं। इसलिए संसार में सब चीटर है, तो हमें कृष्ण जो चीटर नहीं है उनसे प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की भक्त वत्सलता है। और चैतन्य भागवत में और एक उदाहरण आता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो उनके दो महान भक्त वहां रह रहे थे, एक का नाम था पुंडरिक विद्यानिधि और दूसरे भक्त थे जिनका नाम था गदाधर पंडित। क्या नाम था, गदाधर पंडित। तो ये दोनों भक्त बहुत अच्छे मित्र थे, प्रतिदिन ये दो डिवोटीज आपस में मिलते थे, भगवत चर्चा करते थे, हरि नाम साथ में लेते थे और रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। बल्कि वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु कभी भी मिस नहीं करते थे जगन्नाथ का दर्शन करना, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान की कृपा को अनुकूल करना है तो दो कार्य करने चाहिए, जगन्नाथ जी के अधिक से अधिक क्या करना, दर्शन करना, आंखें भर भर के पीना भगवान के सौंदर्य को। इतने भगवान अनुपम है। अब जगन्नाथपुरी जाते हो, मैं कई बार देखता हूं वहां जो गांव की स्त्रियां भी हैं ओडिशा की जो अनपढ़ आदि हैं, लेकिन उनके हृदय में बहुत भगवान के लिए प्रेम की भावना है। वो जगन्नाथ के सामने खड़ी रहकर पूरा जगन्नाथ अष्टकम बोलती है, बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलती है, सुनाई देता है और आंखों से आंसू भी बहते हैं। तो मैं हर बार सोचता हूँ कि अगले बार मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा ना ये अष्टकम याद करके जाऊंगा या फिर दूसरी प्रार्थना याद करके जाऊंगा, तो लेकिन हर बार वो होता नहीं है। फिर से उन माताओं को देखता हूं वहां जाकर, तो देखता हूं कि वहां उनका जो भगवान के प्रति प्रेम की भावना है वो आंखों से बह रही है। हाँ, इसलिए ये विशेष गुण है वहां उन लोगों में। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का दर्शन व्यक्ति को अधिक से अधिक करना चाहिए। बल्कि हम क्या भगवान का दर्शन करेंगे, जगन्नाथ जी हमें क्या करते हैं, देखते हैं अपने बड़े बड़े आंखों के कारण। इतनी बड़े आंखें क्यों है भगवान की, क्योंकि उनके हृदय में करुणा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? करुणा मीन्स दया का भावना, बहुत अधिक करुणा ऐसे भर भर के बाहर निकल रही है जो आंखों से प्रदर्शित हो रही है। इसलिए उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई है, सांसारिक लोगों को वो देखते हैं करुणा भरे या प्रेम या दया की भावना से, और जिसके कारण व्यक्ति को भगवान जगन्नाथ का अधिक से अधिक दर्शन करना चाहिए। और दूसरा, जगन्नाथ जी का क्या करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, भक्तों को, जो जगन्नाथपुरी से चावल ले आते हैं, चावल होता है ड्राई, वो पूरा जीवन मृत्यु तक एवरीडे एक चावल खाते हैं। कुछ भी हो जाए भगवान जगन्नाथ का क्या होना चाहिए, मेरे अंदर प्रसाद जाना चाहिए। प्रतिदिन एक चावल का दाना वो क्या करते हैं, खाते, एकादशी छोड़कर। हाँ, तो मतलब ये भी एक प्रेम का भावना है, भगवान के प्रति एक आसक्ति की भावना है, जिसके कारण रोज भगवान का स्मरण कर पाते हैं। और जिस प्रसाद की कामना बड़े बड़े देवी देवतागण करते हैं, वो प्रसाद व्यक्ति प्रतिदिन खाता है। तो इस प्रकार से आप देखो ये भगवत भक्ति बड़ी आनंददायी है, जिसके कारण कुछ ऐसे व्रत हमें लेने चाहिए जिसके द्वारा भगवान का प्रतिदिन क्या हो, स्मरण होना चाहिए। तो ऐसे ये गदाधर पंडित और पुंडरिक विद्यानिधि प्रतिदिन जाते थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने। और अभी ठंड के दिन आ गए थे, विंटर सीजन आ रहा था, तो वहां ठंड का दिन आता है तो भगवान जगन्नाथ को ठंड के वस्त्र पहनाए जाते हैं, शीत वस्त्र। तो वो जब शीत वस्त्र ओढ़न षष्ठी कहते हैं उसको, ओढ़न षष्ठी, तो उस दिन पहनाना शुरू कर रहे थे। तो ये दो डिवोटीज पहुंचे वहां और देखने लगे, देखा कि क्या कि ये जो वस्त्र पहना रहे हैं तो उनमें वो माड़ लगा हुआ है, स्टार्च होता है ना, कड़क रहते कपड़े नए, बल्कि वो अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध होता है। तो ये पुंडरिक विद्यानिधि जो भक्त थे वो बहुत विद्वान थे, चैतन्य महाप्रभु उनको अपना पिता कह के पुकारते थे, क्योंकि कृष्ण लीला में वो वृषभानु महाराज थे। तो ऐसे पुंडरिक विद्यानिधि नामक इन भक्त ने कहा कि ये कैसे ये पंडा लोग हैं, ये अशुद्ध चीज भगवान को पहना रहे हैं, इनको कोई बुद्धि बुद्धि है कि नहीं। हाँ, हम भी कई बार कमेंट मारते हैं ना भक्तों के प्रति, तो ऐसे कमेंट इन्होंने पास कर दिया। और किसने सुन लिया, किसने सुना, उनकी आंखें नहीं है, यही खासियत है। हाँ, उनके ना हाथ है, लेकिन जहां मर्जी कोई वस्तु हो अपने हाथ से खींच लेते हैं। हाँ, और उनके पास कान नहीं है, लेकिन सारे जगत की आवाज वो क्या करते हैं, सुनते हैं। पांव नहीं है, लेकिन सब जगह क्या करते हैं, चलते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सुना, भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया, मेरे भक्तों के प्रति ऐसे द्वेष की भावना, अभी दिखाता हूं तुम्हें। तो भगवान जगन्नाथ ये रात ये दर्शन वगैरह करके गए घर, और रात को पुंडरिक विद्यानिधि सो गए। तो भगवान जगन्नाथ बदला लेने के लिए निकले अपनी पूरी सेना के साथ। उनकी सेना में कौन कौन है, और दो लोग हैं, कौन है, बलदेव और सुभद्रा देवी। सुभद्रा के अंदर बहुत करुणा है, माँ होती है ना माता, उसके अंदर दया होती है बहुत, आजकल की माताओं में पता नहीं लेकिन सुभद्रा देवी बहुत दयाशील थे। तो ये सब गए और जगन्नाथ जी गए, ये पुंडरिक विद्यानिधि सो रहे थे, जाकर उनके छाते में बैठ गए। छाते में बैठकर पुंडरिक विद्यानिधि के यहाँ गाल में जगन्नाथ जी मारे जा रहे, इतना मारा उनको, इतना मारा कि पूरे गाल का साइज बड़ा हो गया, आंखें भी काले नीली हो गई। बलराम कहते अभी तू उतर, मैं बैठता हूं उसको देखता हूं। मेरे भक्तों के प्रति ऐसी भावना रखता है तो भगवान को सहन नहीं होता, क्योंकि भगवान अपने से भी अधिक भक्त से प्रेम करते। इसलिए उद्धव जब मथुरा में थे तो कृष्ण उनका हाथ पकड़ते और कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ये मेरी पत्नी लक्ष्मी इतने अधिक प्रिय नहीं है, मेरे भाई बलराम मुझे इतने प्रिय नहीं है, ये शिवजी मुझे इतने प्रिय नहीं है, उससे अधिक क्या हो तुम मुझे प्रिय हो। मतलब भगवान ये दिखाना चाहते, प्रकट करना चाहते हैं कि भक्त से कितना प्रेम का संबंध रखते हैं, कितना अधिक प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से बलराम कहते तुम उतरो, अभी मैं देखता हूं इसको, इसने ऐसी हरकत की है। तो बलराम जी भी पूरा अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन देवी सुभद्रा कहते नहीं नहीं अभी बहुत हो गया, छोड़ो छोड़ो उसे, अभी ये सब टीम वापस आता है अपने मंदिर में, फिर से बैठ जाता है अल्टर में। अभी दूसरे दिन ये पुंडरिक विद्यानिधि ने ऐसे नहीं किया कि मुझे पिटाई हो गई अभी मंदिर नहीं जाऊंगा। हमारे साथ होता है ना, कुछ हो गया किसी भक्त के साथ, मंदिर सबसे पहली प्रॉब्लम, जप नहीं करेंगे, दूसरा प्रोग्राम नहीं आएंगे, तीसरा मंदिर नहीं जाएंगे। हाँ, ये हमारा चलता रहता है धुंध, और इसी में जीवन चला जाता है। ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों को इतना गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ बहुत कम है और कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ चीज है। अभी हमारे हाथ में मिली है, चाहे जो मर्जी हो हमारा, कभी लड़ाई हो झगड़े हो ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवत भक्ति की प्रोसेस को क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, कीर्तन नहीं छोड़ना है, प्रोग्राम्स नहीं छोड़ने, कथाएं नहीं छोड़नी है, फेस्टिवल्स नहीं छोड़नी है, वो करते रहना है। मृत्यु आएगा तो सब कुछ अपने आप में छूट जाएगा। तो इसलिए ये गए सुबह दर्शन करने के लिए, अपने घर से बाहर निकल ही रहे थे पुंडरिक विद्यानिधि, तो उनके दूसरे डिवोटी मिले गदाधर पंडित। हम वर्णन करते ना गदाधर, हाँ, तो गदाधर कहते अरे कल रात को तो ठीक थे तुम जब हम मिले थे दोनों, आज क्या हो गया, इतना सारा गाल आपका फूल गया है। तो जो घटना है पुंडरिक विद्यानिधि ने उनको बताई, जिसके द्वारा वो समझ गए और फिर से उन्होंने ये गलती नहीं की। हाँ, इसलिए भगवान जगन्नाथ ये जो शिक्षा है हमें प्रदान करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। तो ऐसे ये भगवान जगन्नाथ है जिनको भक्त वत्सल भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भक्त वत्सल भगवान या प्रेमेर ठाकुर, प्रेम के ठाकुर है। और दूसरा एक भगवान जगन्नाथ को नाम है गीत गोविंद ठाकुर। क्या नाम है, गीत गोविंद ठाकुर। ऐसे अनलिमिटेड लीलाएं हैं भगवान जगन्नाथ से संबंधित। तो गीत गोविंद ठाकुर मतलब ये जो एक काव्य है, एक भगवान की महिमा पर, भगवान के एक महान भक्त जिनका नाम था जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने भगवान कृष्ण की लीला पर एक ग्रंथ का रचना की थी, काव्य की रचना की थी, उस काव्य का नाम उन्होंने रखा था गीत गोविंद। तो ये गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखा था, और ये जयदेव गोस्वामी बहुत विशेष आचार्य हैं। उनके पत्नी का नाम था पद्मावती, और इनका विवाह भी मंदिर के अंदर ही हुआ था, क्योंकि ये यंग थे, अपना घर आदि छोड़कर, उनके विग्रह थे राधा माधव जो अभी जयपुर में है कनक घाटी में, तो ऐसे राधा माधव को लेकर छोटे वो बैठे जगन्नाथ मंदिर में। वहां एक वट वृक्ष है, अक्षय वट जिसका नाम है, साक्षात बलराम उस वृक्ष के रूप में है। उस वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, तो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी बहुत कुछ साल पूर्व उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, तो जगन्नाथ जी के पास गए और कहा कि हमें संतान चाहिए, बहुत साल हो गए विवाह के लिए, जो भी संतान होगी हे जगन्नाथ वो आपकी सेवा में हम क्या करेंगे, अर्पित करेंगे। तो ठीक है, उनको एक पुत्री कन्या प्राप्त हुई। अभी वो कन्या जब बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो पिता ने कहा कि अभी जगन्नाथ को चरणों में समर्पण करते हैं इसको, वो जगन्नाथ की सेवाएं करेगी, यहाँ ही रहेगी पुरी में। जैसे वो जगन्नाथ मंदिर में गए तो भगवान जगन्नाथ ने उनको आदेश दिया कि मेरा एक भक्त है, हाँ उसके साथ इसका विवाह करा दो। हाँ, तो वो कहा है, तो उन्होंने कहा उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। अभी ये जयदेव गोस्वामी सोच के नहीं आए थे कि मुझे विवाह करना पड़ेगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करने आया हूँ मंदिर में। तो ये बैठे थे, तो तो उनके जो पिता हैं पद्मावती के, वो आए और देखा कि ये युवक बैठा है यहाँ वृक्ष के नीचे मंदिर के अंदर। तो उन्होंने अपने बेटी को कहा कि आज से ये जो युवक है वो आपका क्या है, पति है। और ये बोल के माता पिता चले गए और पद्मावती का विवाह हो गया ऐसे बोलने मात्र से। तो पद्मावती को वो स्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या है, कहते तुम्हें तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हें जहां मर्जी जाना है जाओ, मेरे साथ नहीं रहो। लेकिन वो कहती नहीं, ये जगन्नाथ का आदेश है, जिनके कारण वो उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। और आगे चलकर ये जो जयदेव गोस्वामी है ये ग्रंथ की रचना करते हैं गीत गोविंद। ये गीत गोविंद कृष्ण लीला से भरा हुआ है। अरे ऐसा ग्रंथ है, ये सर्व साधारण भक्त के लिए नहीं है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि मुझे ये ग्रंथ छापना है, हाँ कितनी कॉपी छापो, तो उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा दो कॉपी छाप लेना, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, बस। क्योंकि इसको समझने का अधिकार किसी और को नहीं है। जो पूर्ण रूपेण काम वासना से मुक्त है वही व्यक्ति उस ग्रंथ को हाथ लगाने के लिए क्या है, योग्य है। अन्यथा उस ग्रंथ को समझना तो अत्यंत दुर्लभ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ही बोला था। तो ऐसे गीत गोविंद, लेकिन ये गीत गोविंद ओडिशा में क्या है, बाथरूम सॉन्ग है। बाथरूम सॉन्ग समझते हैं ना, कुछ सॉन्ग फेमस हो जाते हैं ना मूवीज का, सारे बाथरूम से उसी की आवाज आने लगती है। तो भक्तों के बाथरूम से कौन सी आवाज आनी चाहिए, हरे कृष्ण जोर से,
कृष्णा, कृष्णा, हरे, हरे, हरे,
तो भक्तों के बाथरूम से तो ये आवाज निकलनी चाहिए। सुबह उठते ही वस्त्र डाल के बाथरूम में जाते, पूरे बाथरूम में गाते रहो स्नान करते हुए। तो उड़ीसा में गांव गांव में वो ग्रंथ गाया जाता है, बच्चे बच्चे गाते उसमें से जो सॉन्ग्स हैं। तो वो समय एक जो किसान था उसकी एक बेटी थी, वो क्या करती थी, रोज जब बैंगन का खेत था बैंगन तोड़ने जाती थी तो इसमें से गीत गोविंद उसको पूरा कंठ में था, वो ग्रंथ संस्कृत है, तो वो गाती रहती थी पूरे सॉन्ग, संस्कृत सॉन्ग्स है। उसमें से ये है, कौन सा है, हम रोज एक पार्ट गाते उसमें से, नरसिंह आरती में है, तव कर कमलवरे नथा अद्भुत श्रृंगार, उसमें से ये जो चार लाइन है वो हम प्रतिदिन गाते हैं। उसमें से एक बड़ा सॉन्ग है दशावतार स्तोत्र, उसका एक पार्ट हम गाते हैं। तो ऐसा वो जो लड़की थी वो गाया करती थी इतना मधुर स्वर से, हाँ क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। यदि कोई भक्त बिना किसी भौतिक हेतु से भगवान का गुणगान करता है, चाहे उनकी कथा करता है या उनकी कीर्तन को गाता है नाम संकीर्तन को, तो भगवान उस स्थान में आकर क्या करते हैं, विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए ऐसे भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने जब जगन्नाथ मंदिर में थे उन्होंने देखा कि मेरे बारे में इतना मधुर गाया जा रहा है, मेरे लीलाओं का वर्णन श्रीमती राधा रानी के साथ, तो भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकल आते हैं, दौड़कर चले जाते हैं वहां। और वो छोटी सी लड़की मग्न है, हाँ वो तोड़ने में बैंगन तोड़ने में, तो भगवान जगन्नाथ जी उसके पीछे ऐसे खड़े हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, नाच रहे हैं और उससे सुन रहे हैं। और भगवान के कपड़े तो ऐसे जो पीतांबर आदि हैं, बैंगन के जो काटे हैं उससे फटने लगे, और उनका ऊपर का जो उत्तरीया वस्त्र था, और भगवान ने देखा कि अरे भोग लगाने का टाइम हो गया, पहुंचना चाहिए मंदिर में पुजारी को, नहीं तो क्योंकि जगन्नाथपुरी में जब भगवान का भोग लगता है तो पुजारी के हाथ में भगवान के जब वो जल रखता है हाथ में, आज भी और आप देख सकते हो हाथ में जब जल रखता है तो उसमें जब तक भगवान का फेस नजर नहीं आता, जिस दिन नहीं आया तो सारा भोगा समंदर में फेंका जाता है। तो प्रतिदिन हजारों हजारों किलो, कितने किलो, 25,000 लोग खाते हैं, इतना भोगा एक समय अर्पित होता है, सोचो कितना होगा। तो तो वो जब अर्पण होता है तो आप खुद सामने देख सकते हो, ओपन रहता है वो, पब्लिक भोग लगाते हुए आप देख सकते हो भगवान को। तो ऐसे भगवान ने सोचा कि अभी भोग लगाने का टाइम हो गया, मुझे दौड़ना चाहिए वापस। तो भगवान जब वापस दौड़े तो उनका ऊपरी उत्तरिया वो बैंगन के कांटों आदि में फंस के वहीं रह गया। भगवान पहुंच गए मंदिर, पहुंच गए तो वो देखते अभी खड़े थे बैठे थे वहां, तो पुजारी आके देखते अच्छा सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन उनका ऊपर का उत्तरिया कहाँ है। तो उत्तरिया देखा तो नहीं है और फिर बाकी कपड़े भी फटे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था एक दिन नहीं प्रतिदिन पुजारी देखते रह गए जगन्नाथ जी की स्थिति को। फिर उन्होंने इसको बोला, राजा को बोला, इसलिए जगन्नाथ का आदि सेवक कोई है तो महाराज गजपति, इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथ का फर्स्ट सर्वेंट, जैसे अमेरिका की प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी होती है ना, हाँ, तो वैसे ही ये फर्स्ट सर्वेंट कोई है, पहला सेवक जिनसे जगन्नाथ सेवा स्वीकार करते हैं वो जगन्नाथपुरी के राजा गजपति होते हैं। तो ऐसे राजा को कहा तो फिर राजा को, क्योंकि भगवान स्वप्न में उनको आदेश देते हैं, तो भगवान ने कहा कि देखो मुझसे रहा नहीं जाता जब ये गीत गोविंद को वो छोटी सी बालिका गाती है, मेरा मन वो श्रवण करने के लिए लालायित होता है और मैं मंदिर को भी छोड़कर चला जाता हूं वहां श्रवण करने के लिए। आप क्या करो उसको यहां ले आओ और मंदिर में वो प्रतिदिन मेरे लिए क्या करेगी, गाएगी, कीर्तन करने की सेवा करेगी। तो राजा उनके पूरे परिवार को लाते जगन्नाथपुरी में और तब से आज तक प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को गीत गोविंद सुनाया जाता है, क्योंकि जगन्नाथ को नींद नहीं आती। रात को आप जाओगे जगन्नाथ मंदिर तो भगवान सोते समय उनको ये सुनाया जाता है गीत गोविंद, और जब सुनते तो वो शांति महसूस करते तब नींद आती है उनको, अन्यथा नींद नहीं आती। इसलिए अभी क्या किया, इतनी उनकी व्याकुलता रहती भगवान जगन्नाथ को कि अभी कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं वो रात को सोने से पहले भगवान को लपेटे जाते हैं और जिसके ऊपर क्या लिखा रहता है, गीत गोविंद लिखा होता है उस कपड़ों के ऊपर, और भगवान पूरा उसको ओढ़ कर सो जाते हैं। इवन उसके अलावा जो तुलसी की मालाएं भगवान धारण करते, विशेष मालाएं जगन्नाथपुरी में, उनके ऊपर वहां की जो स्त्रियां हैं चंदन से उन श्लोकों को लिखती हैं, इतना छोटा छोटा लिखती हैं, जिसको भगवान जगन्नाथ पहनते हैं और आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसा प्रेम भगवान को अपने उन दिव्य लीलाओं के प्रति है और विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद है उसके प्रति। तो अभी भगवान इतना उस भक्त के, ये जो जयदेव गोविंद का, जयदेव गोस्वामी का ये जो ग्रंथ है गीत गोविंद, इससे इतना प्रेम करने लगे तो वहां का जो राजा था उसको लगा मैं भी एक गीत गोविंद लिखता हूँ। हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, वो भक्त वैसा गाता है तो मैं भी वैसा ही गाऊंगा, क्योंकि उसका इतना फेम है, उसकी इतनी वाह वाह है तो मेरी भी वाह वाह होनी चाहिए। वो जैसा कर रहा है मैं भी वैसा करना चाहता। तो ये जीव का प्रॉब्लम है, हर जो इसमें अटका हुआ है। तो ये राजा को लगा इसकी इतनी प्रशंसा क्यों, इसने तो ये गीत गोविंद लिख दिया, मैं भी एक नया ग्रंथ लिखता हूँ गीत गोविंद, मैं भी फेमस हो जाऊंगा। तो इसने भी गीत गोविंद लिखा और कहा कि राजा है तो उसकी चलती है ना, तो उसने मंदिर में कहा कि नहीं अभी कल से मेरा गीत गोविंद गाया जाना चाहिए। अभी बेचारे सारे जो महान महान भक्त थे वहां के जो पंडास थे वो दुखी हो गए कि इनका कैसे गाया जाए। और उसने अपने गीत गोविंद ग्रंथ का नाम क्या लिखा था, रखा था अभिनव गीत गोविंद। कौन सा गीत गोविंद, अभिनव। तब ये नया गीत गोविंद था। तो सब भक्तगण जगन्नाथपुरी में दुखी थे, अभी क्या किया जाए, भगवान को कैसे, राजा को मना करे तो गर्दन काट देगा, तो मना भी नहीं कर सकते। तो सबने कहा कि हम क्या करेंगे, दोनों ग्रंथ लेंगे और जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के सामने रखेंगे रात को, और सुबह भगवान जगन्नाथ जिसको स्वीकार करेंगे उसी को ही हम नित्य समय से गाएंगे। तो ऐसे रात को दोनों ग्रंथ लिखे रखे गए और जब सुबह हो गया तो जो वहां के पुजारी गण थे उन्होंने देखा, एक विचित्र चीज देखी कि जो राजा का गीत गोविंद था उसके पुण्य फाड़ फाड़ के भगवान ने अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद ग्रंथ है उसको भगवान ने कहा लगा के रखा था छाती में, हृदय में। देखा कि वो गीत गोविंद हृदय में चिपका हुआ है। तो इतना प्रेम भगवान जगन्नाथ करते थे इस विशेष काव्य से, इतना प्रेम करते हैं उनकी महिमा से। इसलिए जगन्नाथ का जो रूप है वो बनाई है अपने बारे में श्रवण करके। हम भी अपना रूप बदलना चाहते हैं ना, आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान के बारे में श्रवण करने से ही होगा। तो भगवान ने जब अपनी महिमा रुक्मिणी देवी के द्वारा सुनी द्वारका में, तो वही कृष्ण क्या बन जाते हैं, जगन्नाथ जी के रूप में बनते हैं या प्रकट हो जाते हैं। वो एक विशेष अलग से लीला है। तो ऐसे ये गीत गोविंद है। गीत गोविंद का इतना ही नहीं, बल्कि एक बार एक ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहा था सिंह द्वार से, और जब बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर एक मोची बैठा हुआ था, और वो मोची बैठा था और मोची के पास एक पत्थर होता है जिसके ऊपर वो अपना चमड़ा घिसता रहता है, चप्पल का कुछ करता रहता है, ठोकता है। तो पुजारी ने, ब्राह्मण ने देखा, एक ब्राह्मण ने, कि ये तो, ये जो पत्थर है ये साधारण पत्थर नहीं है, ये तो शालिग्राम शिला है। अरे शालिग्राम शिला के ऊपर अंगूठा रख के उसके ऊपर चमड़ा घिसता है, कूटता है, कील टोकता है। उसने कहा, अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें पता नहीं, मूर्ख गवार। हाँ, वो मोची को डांटने लगा, गालियां देने लगा, ये मुझे दे दो, शालिग्राम दे दो, मैं ले जाता हूं। तो उससे शालिग्राम ले लिया, और शालिग्राम शिला को, क्योंकि शालिग्राम शिला भगवान से क्या है, अभिन्न है, तो ये शालिग्राम शिला को ले लेते हैं ब्राह्मण। ले जाकर अपने घर में उनकी पूरी पूजा आराधना करने लगते हैं, उनका षोडश उपचार आदि करते हैं, उनका अभिषेक वगैरह। तो ऐसे कई दिन चला। तो जब कुछ दिन बीते हैं तो भगवान स्वयं शालिग्राम कहते हैं उस ब्राह्मण को, मुझे ना तुम्हारे यह आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक कमी है। क्या कमी है, कि वो जो मोची था वो नियमित रूप से इवन वहां मुझे पाव के नीचे भी रखता था, लेकिन वहां वो गीत गोविंद गाता था। क्या गाता था, गीत गोविंद। सोचो मोची वहां गीत गोविंद गाता है। अभी हमसे एक वैष्णव सॉन्ग याद नहीं होता, हाँ पूरा गीत गोविंद संस्कृत, देखो उड़ीसा का, इसलिए पद्म पुराण कहता है भारत में उत्कल है श्रेष्ठ, भारत में उत्कल देश बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि भगवान के प्रति वहां के लोगों का स्वाभाविक आकर्षण है। तो ऐसे ही उस ब्राह्मण को कहा कि मुझे यहाँ भी छोड़ दो, मुझे वहां ही भेज दो, क्योंकि मुझे क्या है, वहां वो गुणगान सुनने को मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम क्या हो जाता है, गीत गोविंद ठाकुर, गीत गोविंद ठाकुर कहलाते हैं भगवान जगन्नाथ। इतना ही नहीं, एक बार एक ब्राह्मण अपने घर में गीत गोविंद प्रतिदिन गाया करता था, और उसके ऊपर एक मुस्लिम, किराए में ऊपर का जो घर है वो किराए में दिया था एक मुस्लिम व्यक्ति को। तो जब ये ब्राह्मण रोज गीत गोविंद नामक इस काव्य को या भगवत चर्चा को गाता रहता था, तो ऊपर जो मुस्लिम व्यक्ति रहता था उसको बहुत अच्छा लगता था। वो मुस्लिम व्यक्ति सीढ़ियों से आकर नीचे आकर छुपके से सुना करता था, और ये एक दिन ब्राह्मण ने देखा, अरे वो मुस्लिम व्यक्ति आके सुनता है। इस ब्राह्मण ने कहा, क्या मैं तुम्हें सिखा दूं ये गीत गोविंद। वो मुस्लिम व्यक्ति आनंदित हो गए, कहता हाँ मुझे सिखाओ। उन्होंने कहा, इसको बैठकर गाया करो, एक आसन डाल दो वहां, क्योंकि इसको सुनने के लिए साक्षात भगवान आते हैं। तो जब आप बैठ के इसका गान करोगे तो क्या करना, एक आसन रखना। तो इसी से क्या सीखते हैं हम, कि जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं भगवान, या जप करते हैं, या कीर्तन आदि गाते हैं, या कथा करते हैं, तो हमें सावधान होना चाहिए। इसको कौन सुन रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं। इतना यदि हम सावधान हो जाए ना अपने जप में, तो जप बड़ा ध्यान पूर्वक होगा। हाँ देखो, आप रोज हम कुछ कार्य करते, तो यदि कोई मॉनिटर कर रहा है तो हम कितने सावधान होते हैं। तो उसी प्रकार से जब जप करते हैं हरिनाम का, तो हम वैसे इतना मन चंचल हो जाता है, लेकिन ये भावना यदि हम रखें कि इसको कृष्ण सुन रहे हैं, तो हम सावधानी से हरि नाम लेंगे, बहुत गंभीरता से एक एक मंत्र को सुनेंगे। तो उसी प्रकार से उस मुस्लिम को उन्होंने सिखाया, और वो मुस्लिम भी गाने लगा। रोज आसन रखता था सामने और बस भगवान का गुणगान करता था, इतना उसको अच्छा लगता था। और जब एक दिन उसको जल्दी जल्दी कहा जाना था, तो घोड़े के ऊपर बैठना पड़ा, वो घोड़े के ऊपर बैठा और जा रहा था, तो सोचा अभी गाने का समय हो गया है, तो उसने कहा गाना शुरू कर दिया, घोड़े के ऊपर गाना शुरू किया। अभी वहां आसन का लगाएगा घोड़े के ऊपर, तो जब वो आसन लगाना भूल गया, घोड़े के ऊपर गाकर जा रहा था गाते हुए, तो पीछे मुड़ के देखा कि भगवान उसके पीछे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो वो आश्चर्यचकित होता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपना जो महिमा है उसके प्रति आकर्षित होते हैं यदि भक्त अपने हृदय पूर्वक भावन से गान करता है। तो उसी प्रकार से हम यदि अपना हरि नाम बहुत गंभीरता से उच्चारण करते हैं कृष्ण नाम का, तो कृष्ण भी उसे आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु विग्रह हैं और बहुत परम पावन करने वाले हैं। तो उनका रथ यात्रा भी आ ही रहा है सैटरडे, उसके अलावा आप लोग श्रवण करो भी करोगे भी दो तीन दिन के लिए वहाँ टेम्पल में। तो ऐसे जगन्नाथ जी की जो महिमा है बहुत असीम है, जिनको हमें मेडिटेट करना चाहिए, मन में मनन करना चाहिए, सुनना चाहिए। और भक्तों के बीच में जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या करने चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, जिसके द्वारा हमारा जो हृदय प्रेम ढूंढ रहा है वो प्रेम हमें कृष्ण के प्रति या जगन्नाथ के प्रति हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ, तो एक छोटा सा और एक पास टाइम सुनाकर मैं विराम देता हूँ। शायद आपने सुना होगा, जयपुर में एक राजा थे जय सिंह, और उनकी पत्नी थी चंद्रावती। तो ये लोग एक बार जगन्नाथपुरी गए, ये दोनों राजा और रानी जगन्नाथपुरी गए, तो वहां उनको प्रसादम प्राप्त हो जाता है, और वो प्रसादम प्राप्त करके आनंदित हो जाते हैं। बल्कि उन्होंने सुना कि जगन्नाथपुरी में साक्षात लक्ष्मी भगवान के लिए कुक करती है, बनाती है। हाँ, तो ऐसा विशेष प्रसाद उनको प्राप्त होता है, और वो कहे उन्होंने सुना था कि प्रसाद ग्रहण करने मात्र से सारे जो जीवन की कलमश हैं, पाप है, वो खत्म हो जाते हैं, और जीवन के अंतिम समय में भगवान का उस व्यक्ति को स्मरण हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु के अंत में व्यक्ति भगवान के धाम सरलता से जा सकता है। तो ऐसे ही वापस वो पति पत्नी जगन्नाथपुरी से आते हैं, पत्नी उनको कोई संतान नहीं थे, तो उन्होंने प्रार्थना किया था कि हमें कोई संतान होनी चाहिए, आगे चलकर एक पुत्री जन्म लेती है उस राजा के यहाँ, और वो पुत्री बड़ी हो जाती है और वो सुनती है भगवान जगन्नाथ के बारे में हमेशा अपने माता से, और उसका भी बहुत आकर्षण भगवान जगन्नाथ के लिए स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद जो रानी थी वो इतनी बीमार हो गई कि मानो अभी मृत्यु मरने वाली है। तो ऐसी अवस्था थी उस रानी की, कई प्रकार के प्रयास किए कि वो ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आ रहा था उस राज्य में, जोर जोर से जगन्नाथ के गीत गाए जा रहा था, और वो जगन्नाथ के गीत गाए जा रहा था, ये जो उनकी पुत्री है वो अपने सखियों के साथ वहां से गुजर रहे थे। तो उसने कहा, मैं तो जगन्नाथपुरी से हूं, ये प्रसाद अब अपने माता को दे दो, रानी को, इस प्रसाद को ग्रहण करने मात्र से वो ठीक हो सकती है। एक्चुअली प्रसाद उतना काम करता है जितना आपका क्या है उसमें श्रद्धा है। प्रसाद को हम यदि जीव की लालसा के रूप में स्वीकार करते हैं तो उतना प्रभावित नहीं होंगे हम, लेकिन जब हम कृष्ण का प्रसाद इस भावना से स्वीकार करते हैं कि कृष्ण की थूक इसमें मिली है, भगवान ने साक्षात इसे ग्रहण किया है, तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। तो इसलिए वो प्रसाद को ले जाती हैं और अपनी माता को देने मात्र से वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और कालांतर में वो राजा इतना सेवा भाव था कि कोई भी जगन्नाथपुरी से आता था तो उनकी बहुत अधिक सेवा करता था। तो एक बार एक पुजारी पंडा जयपुर आए तो राजा ने बहुत उनकी सेवा आदि की, और जाते समय उन्होंने क्या किया, उनको कुछ धन दिया उस सेवक को, और कुछ ऐसी भेंटे उनको दी। तो ये जो राजकुमारी थी उनको लगा कि मुझे भी भगवान के लिए कुछ भेजना चाहिए, जगन्नाथ जी के लिए जिनसे प्रेम रखते हो उनके लिए क्या करते हो, आप कुछ ना कुछ भेजते हो। तो इसने सोचा मैं क्या भेजूं, क्योंकि उन्होंने इतना अधिक वृंदावन के बारे में सुना था कि भगवान कृष्ण सबसे अधिक अपने ब्रज वाले भक्तों से प्रेम रखते हैं। तो ये जो राजकुमारी थी उसने बहुत अधिक सुना था, पढ़ा था, चर्चाएं आदि किए थे, तो उसने सोचा मैं क्या भगवान को दे दूं। तो उसने क्या किया, एक ताल पत्र लिया और कस्तूरी, एक गोल्डन पेन लिया, सुवर्ण सोने का पेन, और कस्तूरी से बनी हुई इंक इस्तेमाल की और उसके द्वारा उसने एक लेटर लिखा भगवान को। और वो लेटर लिखकर एक मिक्स अच्छा सा बक्सा लिया और उसके अंदर डाल के किसके हाथ में दे दिया, उस पंडा के हाथ में जो जगन्नाथपुरी जा रहा था जयपुर से। तो उनको कहा कि आप वापस जा रहे हो जगन्नाथपुरी, तो मेरे माता पिता ने तो बहुत धन आदि कुछ कुछ दिया है, लेकिन ये मेरी छोटी सी भेंट आप किसको दे दो, जाकर भगवान जगन्नाथ को दे दो। एक्चुअली हमारे पास कुछ भी ना हो ना, लेकिन हृदय में देने की भावना हो तो कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि केवल वो डिजायर। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन नहीं भी गए आप, वृंदावन जाने की केवल इच्छा व्यक्त करोगे तो कृष्ण अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं, अनंत पाप राशि खत्म हो जाती है केवल ये डिजायर व्यक्त करने से कि वृंदावन जाना है या फिर भगवान के धाम में जाना है, केवल इच्छा करने मात्र से। क्योंकि इच्छा करने मात्र से भगवान उसको सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसे जब इस राजकुमारी ने वो दिया बक्सा, तो ये पंडा, ये पुजारी थोड़ा सा ये था, उसने सोचा अच्छा बक्सा दिया, क्या दिया देख लेता हूँ, बीच में मैं निकाल देता हूँ, कई बार होता लिफाफे में आपको दक्षिणा मिलती है, हाँ तो आप देख लेते हो कितना लक्ष्मी दिया है, कितना दक्षिणा मिला है पंडित जी को। तो वैसे इन्होंने क्या किया, अच्छा, और उसने बोला था ये किसके लिए है, जगन्नाथ जी के लिए, आपके लिए तो दे दिया मेरे माता पिता ने, और उसके अलावा एक गोल्डन कॉइन उसने दिया था इसके लिए, पंडित जी के लिए, कि ये बक्सा कैरी कर लेना, लेकिन उसके अंदर का खोलने के लिए बोला नहीं था। अभी ये जब जा रहा था ऐसे हाथ में रख के, सर में जैसे भी गया होगा, उसका पूरा मन बक्से के अंदर था, क्या है क्या है क्या है, रहा नहीं गया। और जब थोड़ा जगन्नाथपुरी निकट आ गया तो उसने क्या किया, उसको खोल ही दिया। खोल के उसको लगा कुछ बहुत मूल्यवान भेजा होगा जगन्नाथ के लिए, एक कागज था, ताल पत्र था, पन्ना, जिसमें कुछ लाइन लिखी थी इंक से, एक श्लोक लिखा था उसने। और फिर उसने कहा ये क्या है, पागल राजकुमारी, उसने ऐसे फेंक दिया, मिट्टी में फेंक दिया उस ताल पत्र को, और ये पूरा आनंद से अपने घर गया। रात को सोया ना, भगवान जगन्नाथ आ गए। जगन्नाथ जी डेंजर है, आप देखो वो, आप गए हो मायापुर में, वहां सीमांत द्वीप में जगन्नाथ जी राजापुर में, एक बार वो बच्चे आ गए दो तीन, वो तो आल्टर कैसा है, कैसे भी घुस जाओ सामने ही है, वो कोई फेंसिंग या हाइट नहीं है, वो सीधा सीधा है। तो स्कूल के बच्चे, वहां स्कूल था, वो दो बच्चे और एक छोटी सी बच्ची आ गई, और उस बच्चे ने क्या किया, पहले तो देखा कि वो जगन्नाथ जी और बलराम के बीच में एक पीली कलर वाली कोई है, सुभद्रा है, देखा कि उसने गोल्डन कुछ पहना हुआ है। अभी जो छोटी छोटी लड़कियां होती है उनको गले में पहनना सहनना बड़ा अच्छा लगता है, तो उसने क्या किया, कहा उसको, कहा दूसरे बच्चे को, कहा वो मुझे उसके गले से निकाल के दे दो, कोई पुजारी नहीं था। बच्चा जैसे अंदर गया ना, सुभद्रा के गले में ऐसे हाथ डालने वाला था, बलराम ने थप्पड़ मार दी, बच्चा अल्टर से बाहर। तो ऐसी स्थिति थी। और फिर उतना ही नहीं, जब उस मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब मार्बल यूज हो रहा था, तो मार्बल का काम हो रहा था, तो एक व्यक्ति शायद सिक्योरिटी गार्ड या कोई चौकीदार क्या करता था, कोई नहीं मंदिर का भक्त, एक एक मार्बल का पीस रोज क्या अपने घर, इतना कंस्ट्रक्शन में कौन ध्यान देता है, भक्त लोग बिजी रहते हैं अपनी सेवाओं में। तो ऐसे वो मार्बल एक एक घर जा रहा था, और ध्यान किसका था उस पर, जगन्नाथ जी कहते अभी टीम लेके पहुंचता और रात को आपके घर। तो बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी पहुंचते हैं, और जो पुंडरिक विद्यानिधि के साथ किया था जगन्नाथ ने, वैसे उसी के साथ बैठ गए उसके घर छाते में, और उसकी धुलाई करना शुरू कर दी, बलराम ने भी की। तो ये भगवान जगन्नाथ ऐसे वैसे नहीं है। हाँ, तो एक बार वह राजापुर में तो एक दूध वाला था, अभी दूध वाले आजकल कहते हैं ना प्योर गाय का दूध हम दे रहे हैं और टू व्हीलर में लेके घूमते रहते हैं। हमारे मंदिर में मैंने कई बार देखा है, वो मंदिर में दूध लाता है दे देता है। मैं ऐसे दर्शनार्थी के बाद बाहर आ गया था तो देखा मंदिर में दूध जो दिया बर्तन से पूरा, वो क्या कहते उसको ड्रम्स होता है ना, केटल होते इतना बड़ा, वो मंदिर में उल्टा कर दिया दे दिया। बाहर आके जो बाहर टंकी है ना पानी का उसमें लगा दिया उसने और भर रहा था। मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। और लोग कहते हमें तो पूरा गाय का प्योर दूध मिल रहा है, मदर डेयरी का नहीं लेते। तो इतना चलावा है। तो ऐसे ही वहां राजापुर मंदिर में वो जो दूध वाला है दूध देता था, उसको लगता है भक्त लोग क्या ध्यान देंगे, जो मर्जी दे दो, तो वैसे पानी डाल के देता था। अभी सब ध्यान सबसे ज्यादा किसका रहता है, भगवान का। भक्तों का ध्यान है नहीं, वो इतना मायने नहीं रखता, भगवान देखते अच्छी तरह से। और भगवान एक बार आपको देखे तो फिर खत्म। तो ऐसे जब हुआ दूध वाला, उसको लगा चलो पैसे मिल रहे आराम से और क्या, पानी भी डालो दे दो। ऐसे देते गया एक हफ्ते तक ऐसे किया। लेकिन एक हफ्ते के बाद जो भी दूध निकलता था और घर से बाहर निकलता था ना, तो पूरा दूध फट जाता था उसका, क्या खराब हो जाता था। ऐसा पूरा एक हफ्ता हो गया, इतना सारा लॉस हो रहा था उसका। तो वो एक दिन मंदिर के पास आया और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, थोड़ा सा मित्रता रहते हैं, वो गार्ड को बोला कि आजकल आप आते नहीं दूध देने, कहते दूध ही खराब हो जाता है। चौकीदार वैसे बोलते हैं पानी में नहीं डाल के तो नहीं देता मंदिर में। उसने कहा सही में पानी डाल के देता हूँ। दूसरे दिन से दंडवत किया वहां जगन्नाथ को जाके कि कभी भी पानी डाल के नहीं दूंगा। तो ऐसे ऐसी स्थिति है। तो ये जो ये था, जगन्नाथ जी रात को इस पंडा के सपने में गए जो जयपुर से ले गया था बक्सा, और उसको कहा अरे तुमने जो राजा आदि ने तुम्हारे लिए जो भेंट दिए वो तो तुम अपने साथ लेके आ गए जगन्नाथपुरी में, लेकिन मेरे लिए जो स्पेशली भेजा था वो तुम लाए नहीं, तुम फेंक दिए। डांट लगाए उसे और ये डर गया। सुबह उठ के मंदिर में गया भगवान का दर्शन करने के लिए। गया तो देखा, कहते तुम सुबह आ जाओ मंदिर। तो गया तो देखा कि एक छोटा सा ये जो ताल पत्र जो था जिसके ऊपर कुछ अंकित था वो भगवान के छाती में लगा हुआ था, भगवान ने उसको यहाँ पकड़ा हुआ था। तो पुजारी ने सबने देखा तो एक पुजारी ने जगन्नाथ जी के वहां से वो निकाला ताल पत्र और जिसके ऊपर लिखा था एक बहुत सुंदर श्लोक, जो श्लोक उस युवती ने या राजकुमारी ने लिखा था उसमें भगवान के लिए कि भगवान मैं क्या अर्पण करना चाहती हूँ, आपको क्या देना चाहती हूँ। तो वो राजकुमारी लिखती है जयपुर की, रत्नाकर तव ग्रहं गृहिणी च लक्ष्मी किं देय अस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभीर गोपल ललनार्तमानसाय दत्तं मन तदनु मे कृपया गृहाना। तो वो लिखती है ये श्लोक, चार लाइन का है, जिसमें वो कहती है रत्नाकर तव ग्रहं गृहिणी च लक्ष्मी। तो सबसे पहले भगवान को हम कुछ देने की सोचते तो हमें लगता है कुछ पैसे देने चाहिए, धन देना चाहिए ना, संपदा देनी चाहिए। तो वो कहती है कि हे भगवान मैं आपको कुछ धन संपदा देने की सोच रही थी लेकिन मुझे एक याद आ गया। क्या याद आ गया, तो आप तो जो जहां सो रहे हो ना वो स्थान रत्नाकर है। समंदर का एक नाम क्या है, रत्नाकर, जिसमें रत्न ही रत्न है। अभी जो व्यक्ति रत्नों के ऊपर सो रहा है उसको क्या मैं दूं मूल्यवान चीज, कहते क्या देने लायक नहीं है। और फिर दूसरी चीज मुझे याद आ गई, तव ग्रहम ग्रहिणी च लक्ष्मी, आपके घर की गृहिणी कौन है, लक्ष्मी। अभी क्या पैसे धन आदि दे के मैं शांत हो गई कि धन, अभी जिनके पास रत्न के ऊपर सो रहा है व्यक्ति, जिनके घर में साक्षात लक्ष्मी है, उनको क्या दान में दे दू, क्या रत्न आभूषण धन आदि दे दू। कहती वो दे नहीं सकती, किम देय अस्ति भवते पुरुषोत्तमाय, हे पुरुषोत्तम भगवान मैं आपको क्या दे दू, मेरे पास तो है नहीं इससे परे और देने के लिए। फिर कहती एक चीज आपके पास कमी नजर आ रही है मुझे, भगवान में भी दोष देखने लगी। क्या दोष देखा, वो अच्छा दोष था। वो कहती है आभीर गोपल ललनारुत मानसाय। वो कहती है कि आभीर गोपल ललना, ये जो वृंदावन की गोपिकाएं हैं, वृंदावन के जो भक्त हैं, उन्होंने आपकी एक चीज चुरा ली है, या आपने जब वृंदावन को छोड़ा और द्वारका आ गए, द्वारका से अभी जगन्नाथपुरी में हो, तो आपने एक चीज आपके पास नहीं है, और वो क्या है? ऋत मानसाय, आपका हृदय और विशेष रूप से आपका मन आपके पास नहीं है, मन से रहित हो आप। तो इसलिए वो कहती है दत्तम मन तद अनुमे कृपया ग्रहण। हे जगन्नाथ, मैं आपको दत्तम मनम, दत्तम मीन्स मैं दे रही हूं, क्या दे रही हूं? मन अपना दे रही हूं, कृपया ग्रहण। हे जगन्नाथ, आप कृपा करके इसको क्या करो? ग्रहण करो। इतना अमेजिंग श्लोक लिखा, इसलिए भगवान जगन्नाथ बिल्कुल व्याकुल हो गए। जगन्नाथ ने सोचा कि इसने तो मेरे मन को क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। हम भक्तों में इतना सामर्थ्य होता है, भगवान के मन को वो आकलन कर सकते, पढ़ सकते हैं। तो ऐसे जब उन पंडों ने वहां पढ़ा ये श्लोक और वो गदगद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में जितना भी भक्तिमय कार्य है, जितने भी उत्सव आदि हैं, सेवा है, अध्ययन है, हरिनाम है, कुछ भी है, सबका सार क्या है? भगवान को अपना मन अर्पित करना। इसलिए गीता को पढ़ने के बाद गीता का सार यही है, बारंबार भगवान हमसे एक अपेक्षा करते हैं, मन मना भव मत भक्तो, आप मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त बनो, मुझे ही मांग नमस्कारो, मुझे ही नमस्कार करो। तो सारे आध्यात्मिक अभ्यास करने का सार है कि हमें अपने मन को कृष्ण को देना है। किसको देना है? कृष्ण को। तो वो सबसे कठिन काम है, लेकिन जब हम बहुत गंभीर और सरल हृदय से भक्ति नहीं करते तो ये सरल काम बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए कि इस स्थिति में हमें कृष्ण को अपना मन देने का प्रयास करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा समर्पण है कृष्ण के प्रति, क्योंकि जहां मन वहां तन, जहां मन जाएगा वहां क्या जाएगा? हमारा तन। वे मन गोलगप्पे खाने के लिए चला गया, कहां कहां होते गोलगप्पे अच्छे? लाल के लिए पता नहीं, जहां मर्जी हो, लेकिन जहां मन चला गया ना वहां तो शरीर अपने आप चलता है, वो गाड़ी भी ढूंढ लेगा, कर्जा भी लेगा, उल्टा पुल्टा सब कुछ करेगा, लेकिन पूरा पहुंच जाएगा शरीर के साथ। तो इसलिए मन किसको देने का प्रयास करना है? कृष्ण को। ये जगन्नाथ जी है उसीलिए, हाँ, रथ यात्रा आदि जितने भी उत्सव है, जन्माष्टमी आदि, ये सब हम मनाते हैं ताकि हम धीरे धीरे हमारा मन कृष्ण को पूर्ण रूपे न दे। और यदि एक बार कृष्ण में मन लग गया तो हम कृष्ण के लिए पागल रहेंगे। किसके लिए पागल रहेंगे? कृष्ण के लिए, अन्यथा ये जगत के लिए हम पागल है ही। तो इसलिए कृष्ण के मन वाला होना चाहिए, और कृष्ण के मन वाला होने के लिए प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति करने के लिए कहा है, और उसमें से भी दो सबसे पावरफुल है, और वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम। कुछ भी हो आध्यात्मिक जीवन में ये दो चीजें बढ़ाते रहना चाहिए, श्रवणम करना, कीर्तनम करना। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ उत्सव नजदीक आ रहा है, तो वो आना तभी सफल हो सकता है जब हम हमारा मन उस राजकुमारी की तरह किसको अर्पित करें? जगन्नाथ जी को। और मन हमारा लग सकता है जब हम अधिक से अधिक सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, सेवा में लगते हैं, भगवान के नामों का गंभीरता से जप करते हैं। तो जो भी ये विधि दी है कृष्ण में मन लगाने के लिए, और एक बार आपका मन कृष्ण में लग गया तो आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? टेढ़े हैं, त्रिभंग ललित हैं, और टेढ़े व्यक्ति के अंदर घुसना थोड़ा कठिन होता है ना? टेढ़े व्यक्ति, ये बड़ा टेढ़ा है, इसके पास जाना ही डर लगता है, हाँ, इसके घर जाने में डर लगता है, लेकिन उससे मित्रता हो जाती है तो वो टेढ़ा व्यक्ति फिर से आपको छोड़ता नहीं है। इसलिए कहते हैं कृष्ण टेढ़े हैं, जो हमारे हृदय में जाना बहुत कठिन है उनका, लेकिन एक बार भगवान गए टेढ़े अंदर, टेढ़ी चीज फंस गई तो बाहर आ नहीं सकते, वैसे जगन्नाथ जी या कृष्ण आ नहीं सकते। इसलिए जब बिल्व मंगल ठाकुर वृंदावन आए थे, जिनके पास आंखें नहीं थी, और भगवान स्वयं देखा कि इतना प्रेम है, तो वो स्वयं भगवान बालक के रूप में उनका हाथ पकड़ते और ब्रज में सब जगह घुमाते और सब कुछ उनको वर्णन करते। तो एक दिन ये बिल मंगल ठाकुर ने अनुभव किया कि ये जो बालक प्रतिदिन मुझे लेने आता है, घुमाता है, वर्णन करता है, ये कोई और कोई बालक नहीं है, साक्षात कौन है? कृष्ण है। और उस दिन उस बालक ने बिल्व मंगल ठाकुर का हाथ पकड़ा था उस भक्त का, और जैसे उनको ये पता महसूस किया बिल मंगल ठाकुर ने कि ये तो कृष्ण ही है, रोज बालक के रूप में आते हैं, तो भगवान ने उनका हाथ छोड़ा और दौड़ने लगे। बिल मंगल ठाकुर कहते हैं, ठीक है मैं अंधा हूं, मेरा हाथ छोड़कर भाग सकते हो, लेकिन तुम में हिम्मत है तो मेरा हृदय छोड़कर भागो, हमें दिखा देता हूँ। तो भगवान में फिर हिम्मत नहीं है, एक बार उनके भक्त के हृदय में बस गए तो बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए जो जेल है वो भक्त का हृदय है, भगवान के लिए वो जेल है, वो जेल से इजीली बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए आप सब बहुत भाग्यवान हो, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हो, और ये भगवत नाम भगवत कथा आदि श्रवण करने का मौका मिला है, उसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि मृत्यु क्या है, बहुत नजदीक है, तो फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, श्रील प्रभुपाद के, जय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। समय अधिक हो